मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 9 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुस्मिता देशमुख भिलाई छत्तीसगढ़ से, रामदयाल जलंधर पंजाब से और विशाल राठौर सेमलिया मध्य प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं श्रमिक संबंधी उपाय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के अखबार आपने पढ़े होंगे और कल चैनल पर भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस पर पूरी तरह से विजय पाकर अपने आप को पूरी तरह से अनलॉक घोषित कर दिया है। पूरी तरह से अनलॉक, ये एक जनरल नॉलेज का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, खासकर दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए जहां दूसरे देश अभी भी उससे जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड उससे मुक्त हो चुका है और 22 मई के बाद से वहां कोई भी केस कोरोना संक्रमण का नहीं मिला है। ये तो नॉलेज की बात हो गई। अब इत्मीनान की बात यह है दोस्तों कि अगर एक देश कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो सकता है तो दुनिया के दूसरे देश भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई घटना एक बार घटित हो सकती है तो वो दोबारा भी घटित हो सकती है, अगर दोबारा घटित हो सकती है तो तिबारा घटित हो सकती है, और अगर तिबारा घटित हो सकती है तो बार बार घटित हो सकती है। यानी कि हम भी संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं, दुनिया भी संक्रमण से मुक्त हो सकती है। कम से कम न्यूजीलैंड ने दुनिया के दिमाग में और उसके दिल में ये आशा की यह किरण तो जगाई ही जगाई है। फ्रेंड्स दूसरी खबर जो आज अखबारों में बहुत ही प्रोमिनेंटली है और वो ये है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के वो को लेकर के चीन की पूरी विश्व में काफी बदनामी हो रही है। आगे देखें कि क्या स्थितियां होती हैं। और अभी जो डेटा आ रहे हैं वो लगभग इस तरह के हैं कि चीन से लगभग 1000 कंपनियां चीन छोड़ने का फैसला कर रही हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब हमें चीन छोड़ देना चाहिए और विचार कर रही हैं कि वो किन देशों में जाएं। एक सामान्य सा अध्ययन किया गया और उसमें पाया गया कि 1000 में से लगभग 300 कंपनियां ऐसी हैं जो भारत आने के बारे में सोच रही हैं, यानी कि कह लीजिए 30%। ये आंकड़ा वैसे उस रूप में बेहतर है क्योंकि 2019 में भारत में आने वाली कंपनियों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। एक अध्ययन किया गया था कि 2019 में चीन से लगभग 56 कंपनियां बाहर निकली, 56। ये मैं केवल एक सामान्य तरीके से बता रहा हूं, है ना, आप ज्यादा आंकड़ों के जाल में मत फंसिएगा, आपके दिमाग में इसका एक इंप्रेशन बना रहना चाहिए। चीन से लगभग 56 कंपनियां बाहर निकली, इसमें से भारत में केवल 3 आई, मतलब बहुत कम है। तो वो कहां गई, आपको इस बात को जानना है कि वो गई कहां है। इन 56 में से जो 26 कंपनियां 26 वो वियतनाम में गई, वियतनाम। इसका मतलब है कि अभी वियतनाम हमारे लिए इस दृष्टि से प्रतिस्पर्धी देश है। 26 वियतनाम में चली गई, 11 ताइवान में चली गई और 8 थाईलैंड में चली गई और हमें केवल 3 से संतोष करना पड़ा। जबकि दोस्तों ये वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड बहुत छोटे छोटे देश हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत विकसित राष्ट्र है। मतलब अगर वियतनाम के बाजार को ही देखेंगे तो भारत के मुकाबले में 1/4 है, लेकिन सबसे ज्यादा कंपनियां उस ओर आकर्षित हो रही हैं। जैसा कि आपने इससे पहले भी डेली ऑडियो लेक्चर में सुना है, अखबारों में भी आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिले होंगे, कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना है इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक अवसर भारत के लिए ये हो सकता है कि किस तरीके से वह विदेशी कंपनियों को अपने यहां आकर्षित करे, और इसके लिए बकायदे भारत सरकार और राज्य सरकारें कोशिश करने में भी लगी हैं। देखिए कि परिणाम क्या होता है, लेकिन हमें एक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और अपने यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक है उसे बेहतर बनाने की कोशिश लगातार होती रहनी चाहिए। और क्यों कम निवेश हो रहा है, मतलब उद्योगों के रूप में, अदरवाइज तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन उद्योग में कम लोग क्यों आ रहे हैं उसके पीछे वही रीजन है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक नहीं है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो अभी भी रिजिड बनी हुई हैं, वही सामान्य सी बातें जो लगातार की जाती रही हैं वही अभी भी कही जाती हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात, और वो ये कि अभी जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, नाम भले ही आपको याद न रहे कोई बात नहीं है, उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कहा है उन्होंने कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अब दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मंदी। लेकिन इसी के साथ ही एक अच्छी बात यह है जिस पर भारत थोड़ा सा संतोष कर सकता है, वो है कि जो मंदी आएगी वो विश्व स्तर पर 7% की होगी, लेकिन भारत में वह 3.2% तक ही रहेगी। यानी कि भारत में जो मंदी होगी वैश्विक मंदी की तुलना में लगभग लगभग आधी होगी। आधी क्यों होगी? देखिए, सिविल सर्विस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आधी क्यों होगी, क्या है भारत के पास ऐसी ताकत की आधी होगी। दोस्तों, इसके बारे में एक दो दिन पहले ही तो शायद हम लोगों ने बात की थी भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में, कि कृषि व्यवस्था इस साल ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से विकसित होगी। हमारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही अनाज पैदा करके खुद ही उसे उसका उपभोग भी करते हैं, ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित है, तो कोरोना का दुष्प्रभाव कृषि पर तो पड़ा नहीं है, बल्कि कृषि व्यवस्था में तो वृद्धि दिखाई दे रही है। यहां उद्योगों पर जरूर पड़ा है, तो जो हम पिछड़ेंगे उद्योग के क्षेत्र में तो काफी कुछ कृषि उसकी भरपाई कर लेगी, और साथ ही साथ हमारे पास अपना बाजार बहुत बड़ा है, तो हमारे यहां अपनी डिमांड क्रिएट होगी। अब केवल यह है कि डिमांड क्रिएट हो सके इसके लिए हम लोगों के हाथ में धन कैसे पहुंचाएं, तो जो 20 लाख रुपए का पैकेज है वो लगभग लगभग इसीलिए था। आप देखते हैं उसके हम स्टिमुलस पैकेज कहते हैं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय हो सके। तो एक छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि यह भी आपके दिमाग में दर्ज रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, श्रमिक संबंधी उपाय। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रमिक जो शहरों में थे कोरोना संकट के बाद, लॉकडाउन के बाद, अपने अपने गांवों को, अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, और अब जबकि लॉकडाउन ओपन किया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, अब राज्यों में मजदूरों श्रमिकों का संकट उत्पन्न हो गया है। और दोस्तों, उन्हें आकर्षित करने के लिए अलग अलग राज्य और वहां के उद्योगपति अलग अलग उपाय कर रहे हैं कि कैसे इन्हें वापस बुलाया जाए। बहुत से औद्योगिक राज्यों ने तो बकायदे लग्जरी सुविधाएं देने का वायदा किया है मजदूरों को, और ये कहा है कि हम जो आपको अभी तक मजदूरी दे रहे थे उसे दुगना तिगुना करने को तैयार हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी मजदूरों के खिलाफ कुछ राज्यों में अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता था, अब उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको गेस्ट वर्कर कहेंगे। आप देखिए कि चीजें कितनी बदल रही हैं। साथ ही साथ केरल सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि हम आपको फ्लैट देंगे रहने के लिए, और आपका हेल्थ, जो आपके हेल्थ संबंधी जो आपकी जिम्मेदारी होंगी वो हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अलग अलग राज्य अपने अलग अलग तरीके से श्रमिकों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में दो बातें नीति के स्तर पर चल रही हैं कि इनका क्या कुछ स्थायी हल ढूंढा जा सकता है। उसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि क्या हमारे जो श्रमिक हैं वो जहां रह रहे हैं हम उनको उनके घरों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, मनरेगा तो इसके लिए है ही, और स्टिमुलस पैकेज के तहत बकायदे मनरेगा में धन बढ़ाया भी गया है ताकि कम से कम अभी तो उनको कुछ काम मिल सके, उनका पेट भर सके। लेकिन क्या हम इस तरह की व्यवस्था लंबे वक्त के लिए कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाने लगा है। और विचार किए जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपके दिमाग में अंडरलाइन होना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि कैसे हम इन श्रमिकों को मीडिएटर्स से बचाएं। दोस्तों, पता नहीं आपके पास इसका अनुभव है कि नहीं है, मैंने तो फील्ड में देखा है। होता क्या है कि एक व्यक्ति जाता है या दो व्यक्ति जाते हैं, कुछ व्यक्ति जाते हैं गांव में और वहां से मजदूरों को इकट्ठा करते हैं कि चलो हम तुमको काम दिलाएंगे। वो मजदूरों को लेकर के आते हैं शहर में, और वहां जो फैक्ट्रियां हैं या जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, क्योंकि वहां से उनकी डिमांड रहती है, बातचीत हो जाती है फैक्ट्री से, तो वो मजदूरों को उन फैक्ट्रियों को सौंप देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि भोपाल में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जो इतनी बड़ी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहां भी जो मजदूर हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। मतलब मजदूरों को सप्लाई करने वाला एक दलाल होता है, तो दलाल से कंपनी की या फैक्ट्री की बातचीत हो जाती है तो पर हेड वो बकायदे मजदूरों की सप्लाई करता रहता है और मजदूरों से इसकी दलाल की अपनी बात हो जाती है मेडिएटर की कि आपको हम इतना पैसा देंगे, तो बीच का बहुत बड़ा हिस्सा मेडिएटर ले जाते हैं। जो मंडियों का हाल है किसानों के संदर्भ में, लगभग लगभग मेडिएटर्स का वही हाल, आप कहली मेडिएटर्स के कारण वही हाल श्रमिकों का भी है। तो अब इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि कैसे इन्हें इन मेडिएटर्स से मुक्त कराया जाए। इसके लिए उपाय होने शुरू हो गए हैं। जैसे रेलवे ने ये कहा है कि रेलवे जो बकायदे फ्रेट अपना प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, उसके लगभग लगभग 9 राज्यों के 55 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये मतलब काम चल रहे हैं। उसने बकायदे वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिख करके कहा है कि हमें आप मजदूर उपलब्ध कराइए और हम उन्हें वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। झारखंड की सरकार ने बकायदे सीधे जो हमारे सीमा सड़क संगठन है उससे बात कही है, सरकार ने बात की है कि आप बताइए आपको कितने मजदूर चाहिए, हम आपको सीधे मजदूर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि नो मेडिएटर, बीच का कोई दलाल नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर सच में इसमें सफलता मिल सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनको जब ट्रेन से लाने की बात हुई तो बकायदे वो अपना जो रजिस्ट्रेशन कराते थे वो ऑनलाइन ही कुछ कराते थे, मोबाइल वोबाइल के जरिए ही कराते थे। तो एक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जिन श्रमिकों को रोजगार की जरूरत है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो कि वो वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें, जैसे ओलेक्स वगैरह है ना, पुराना सामान खरीदते और बेचते हैं, और वहीं जिनको रिक्वायरमेंट है मजदूरों की वो उसमें डाल दें और इस तरह से वो मैच हो जाए और श्रमिक इन जो मेडिएटर्स हैं इनके शोषण से बच सके। बहुत जबरदस्त रूप से मित्रों यहां इनका शोषण होता है। तो अब आप देखें कि एक नया आपको होराइजन, एक नया आयाम यहां श्रमिकों के बारे में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से अब आवास के बारे में बातें की जाने लगी हैं कि श्रमिक जब शहरों में जाते हैं तो उनके आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। बकायदे ये कहा गया है, पहले भी हम लोगों ने बात की कि जो पीएम हाउस, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस पर ध्यान दिया जाए और सरकार ही अब कुछ ऐसे आवास बनाए जो मजदूरों के लिए हों, उनकी जरूरतों के हिसाब से हो, सरकार उसका बहुत ही मिनिमम रेंट रखे जो मजदूरों से वो ले और उनको अच्छी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराए। और यही काम बकायदे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कर सकते हैं। मतलब सरकार अगर कुछ ऐसा नियम बना ले कि नहीं, आपके यहाँ जितने मजदूर होंगे उनके रहने के लिए आपको इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, हाँ आप मजदूरों से बकायदे उसका किराया ले लीजिए और वो जो रहने की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ कुछ इस तरह की भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि वहाँ समुदाय के रूप में उनको गर्म भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो डेफिनेटली न केवल मजदूरों का ही, श्रमिकों का ही जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि जो हमारे उद्योग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो सकेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा ज़्यादा सरकार करे या वो लोग जो हमारे उद्योगपति हैं इसके लिए कुछ टैक्स उनसे ले सकते हैं, टैक्स तो नहीं कहना चाहिए, प्राइवेट पर्सन टैक्स नहीं ले सकता, कुछ भी है किराए के रूप में ले लें, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर उसका कुछ भुगतान उनसे ले लें। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि श्रमिकों के बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया जाने लगा है और ये बहुत बड़ा आप कह लीजिए भारतीय उद्योग क्षेत्र में जबरदस्त रूप से यू टर्न होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है। सत्यनारायण लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अंशिता मेघ राजानी भोपाल से, स्नेहल द्विवेदी अहमदाबाद से, उत्कर्ष राय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आकाश राज पूजा गुप्ता उत्तर प्रदेश से, राज सूर्यवंशी गंजबासौदा मध्य प्रदेश से, पूजा सिंह और हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।